الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम मुकदमा मारिफ कुरान में से पढ़ते हैं, लेकिन पिछली क्लास में हमने मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहू की जो असल किताब है उलूमुल कुरान, तो उसमें से हमने फिर पढ़ना शुरू कर दिया था। उसी मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कि तफसीरुल कुरान में क्या क्या गलत फहमियाँ लोगों को लग जाती हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि तफसीर की जो है वो दो बुनियादी किस्में होती हैं। ये लफ्ज़ गालबन पहली दफ़ा पिछली क्लास में ही किया गया था कि तफसीर की दो बुनियादी किस्में होती हैं। एक होती है तफसीर बिल रिवाया, तफसीर बिल रिवाया यानी रिवायत की बुनियाद पर तफसीर करना, नरेशन की, समथिंग दैट हैज बिन नरेटेड। ठीक है, तो जो रिवायत है जैसे कुरान की अपनी कोई आयत, उसकी उससे जो है वो कुरान की किसी आयत की तफसीर करना, तो कुरान की आयत आयत क्या है, ये नरेशन है। ठीक है ना, ये मरवी है, ये ठीक है, ये रिवायत की गई है। कुरान की आयत ये रिवायात हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होते हुए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते से नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से सहाबाए कराम के पास पहुंची। तो ये कुरानी आयात जो है ये भी रिवायत हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम की अपनी जो अहादीस हैं वो भी नबी अलैहिस्सलाम से आगे रिवायत होती हुई आई सहाबा कराम के पास, सहाबा कराम से आगे ताबईन के पास होते होते हम तक पहुंची। तो ये होती है तफसीर बिल रिवाया। ठीक है, और दूसरी किस्म की तफसीर होती है तफसीर बिल बिर राय। ठीक है ना, राय से तफसीर करना यानी अपने ओपिनियन से तफसीर करना। तो ओपिनियन से तफसीर करने के बारे में फिर दो अहदीस जो कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने मुकदमा मारफुल कुरान में भी नकल करी थी लेकिन उनकी तफसील बयान नहीं करी थी, तो उनको पढ़ करके एक आम आदमी को यही लगता है कि भाई बिल्कुल भी रिवायत के अलावा तो तफसीर हो ही नहीं सकती। राइट, अपनी राय इस्तेमाल करना तो जायज़ ही नहीं है, वरना तो फिर जहन्नुम में अपना ठिकाना बनाना पड़ेगा। तो फिर हमने उसकी तफसील पढ़नी शुरू करी थी कि तफसीर बिर राय जो है तो ये किन सूरतों के अंदर जायज़ होती है और उम्मत ने इसको फिर इस्तेमाल किया है। तो उसके फिर उसूल व कवायद होते हैं, जाहिर है जिस तरह से हर चीज़ के उसूल व कवायद होते हैं। इस दुनिया के अंदर हमें आज़ादी नहीं दी गई है, किसी भी मामले में हमें इस दुनिया के अंदर आज़ादी नहीं दी गई है। ठीक है, इख्तियार के मामले में बस एक गुना बज़ाहिर आज़ादी दी गई है कि जी तुम इख्तियार कर लो सही रास्ते और गलत रास्ते के दरमियान। ठीक है, वो भी जो है वो अल्लाह ताला के इल्म अज़ली के तहत ही है, अल्लाह ताला को सब मालूम है कि हमने क्या इख्तियार करना है। ठीक है ना, लेकिन चलें तकदीर की बहस में पड़े बगैर हमें आज़ादी दी गई इख्तियार की, उसके अलावा किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी आज़ादी की जो बातें होती हैं ना, हम आज़ाद हैं और वो आज़ाद हैं और ये आज़ाद है, ये सब अजम्पशंस होती हैं और ये रॉन्ग अजम्पशंस होती हैं जिनको अंग्रेजी जुबान में कंजेक्चर कहा जाता है। कंजेक्चर्स, दीज आर जस्ट कंजेक्चर्स, गुमान है बस, खुश गुमानियाँ, खुश फहमियाँ हैं आज़ादी की। ठीक है, तो हम कोई भी आज़ाद नहीं है दुनिया के अंदर, आज़ादी तो मिलेगी जन्नत में, है वो एक छोटी सी खुदाई मिलेगी हर जन्नती को, दुनिया में कोई नहीं आज़ादी मिलने वाली है। ठीक है, मरते मरते तक भी कोई आज़ादी नहीं मिलने वाली है। बहरहाल, तो फिर उसूल व कवायद है ना, घर में बच्चा रहता है उसूल व कवायद के तहत रहता है। ठीक है ना, मुआशरे के अंदर शहरी रहता है किसी मुल्क का उसूल व कवायद के अंदर रहता है। ठीक है, दुनिया के अंदर इंसान रहता है दुनिया की ज़िंदगी के अंदर उसूल व कवायद के तहत रहता है, आज़ाद कोई नहीं रहता। शैतान ट्रिक्स्टर उसका काम ही है धोखे में डालना, है ना। धोखे में डालना ये किसका काम है? शैतान का काम है। तो वो हमें जो है वो बावर कराता रहता है झूठ बोल बोल करके, धोखे दे दे करके, तुम आजाद हो तुम आजाद हो, जैसे पाकिस्तानियों को धोखे देता रहता है, तुम आजाद हो 14 अगस्त को आजाद हो गए थे, इंडियंस को धोखे देते रहता है, तुम आजाद हो तुम 15 अगस्त को आजाद हो गए थे, राइट। और जो है वो हर तरह औरतों को धोखे देता रहता है आजकल जो है वो सबसे ज्यादा जोबन के ऊपर उसका धोखा किस पे चल रहा है, औरतों के ऊपर, तुम आजाद हो और तुम आजाद हो सकती हो और तुम आजाद हो के सब कुछ कर सकती हो, ये सारे तमाशे हैं, झूठ झूठ है। खैर ये हमारी इस तरह की साइड की चीजें जो है वो चलती रहती हैं, इवन उलूमुल कुरान के टॉपिक के अंदर भी, आदत से मजबूर भी तो होता है ना कोई शख्स, तो हम भी मजबूर हैं। एनीवे तो उसूलों कवायद हमने फिर पढ़े थे, और ये भी पढ़ा था कि उसूल तफसीर को नज़रअंदाज करने की बहुत सी सूरतें हो सकती हैं, वो सूरतें हमने पढ़ ली। अब जो है वो तफसीर में गुमराही के असबाब मुफ्ती तकी उस्मानी दामद बरकात तो हमने बयान करने शुरू किए थे, तो उसमें पहला सबब आज हमें पढ़ना है। पहला सबब है ना एहलियत, लैक ऑफ क्वालिफिकेशन, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू डू तफसीर ऑफ द होली कुरान। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है कि बहुत शुरू में जब ये आजिज़ मौलवियों के साथ उठना बैठना उलमाए कराम के साथ है, इनको हम ऐसे ही अपने लैंग्वेज में मौलवी कह देते हैं ना, मौलवी भी तो फिर वही है ना, मौलाना है वो, तो अल्लाह ताला अपने बारे में कुरान मजीद में फरमाते हैं अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तो मौलाना कोई बुरा लफ्ज़ तो है नहीं। बहरहाल तो लोगों की स्लैंग में जो है वो मौलाना ज़रा बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या मौलवी। तो हमने जब उलमाए कराम के साथ उठना बैठना शुरू किया, तो बिल्कुल शुरू ही में हमारे एक उस्ताद मुफ्ती पटेल साहब, उन्होंने उसी वक्त कह दिया था, उन साजिज ने उनका एक दर्स कुरान शुरू करवाया था हमारी मस्जिद के अंदर, लोकल मस्जिद में, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि काशिफ भाई हम तो तफसीर नहीं कर, मैंने उनको कह दिया था कि जी आप तफसीर करना शुरू करें, उन्होंने कहा काशिफ भाई हम तो तफसीर नहीं कर सकते, हम तो तफसीर का दर्स कर सकते हैं, तो हमारा दर्स जो है ना वो दर्स तफसीर है असल में, ठीक है ना, तफसीर करना हमारी हमारी अहलियत इतनी नहीं है। और वो थे मुफ्ती साहब, बड़े उस्ताद आदमी थे, लोगों को जो है वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते थे, वो अपने बारे में कहते थे कि हमारी अहलियत नहीं है तफसीर करने की, हम तो दर्स कुरान करते हैं ज्यादा से ज्यादा। बहरहाल तो तफसीर कुरान में गुमराही का सबसे पहला और सबसे खतरनाक सबब यह है कि इंसान अपनी अहलियत व सलाहियत को देखे बगैर कुरान करीम के मामले में राय जनी शुरू कर दे। राय जनी बस यानी अपनी राय बयान करना, मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ, मैं ये नहीं समझता। खास तौर से हमारे जमाने में गुमराही के सबब ने बड़ी कयामत ढाई है, ये गलतफहमी आम होती जा रही है कि सिर्फ अरबी जुबान पढ़ लेने के बाद इंसान कुरान मजीद का आलिम हो जाता है और इसके बाद जिस तरह समझ में आए कुरान करीम की तफसीर कर सकता है। हालांकि सोचने की बात यह है कि दुनिया का कोई भी इल्म फन ऐसा नहीं है जिसमें महज जुबान दानी के बल पर महारत पैदा हो सकती हो। आज तक किसी जी होश ने अंग्रेजी जुबान पर मुकम्मल अबूर रखने के बावजूद ये दावा नहीं किया होगा कि वो डॉक्टर हो गया है और मेडिकल साइंस की किताबें पढ़कर दुनिया पर मशके सतम कर सकता है, ठीक है, यानी मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ ली, अब जो है ना वो लोगों का इलाज करेगा, लोगों का की सर्जरी करेगा, उसने एनाटॉमी की बुक पढ़ ली और उसने ये पढ़ लिया। इसी तरह कोई शख्स महज इंजीनियरिंग की किताबों का मतलब करके इंजीनियर बनने का दावा नहीं कर सकता और ना कानून की आला किताबें देखकर माहिर कानून कहला सकता है, और अगर कोई शख्स ऐसा दावा करे तो यकीनन सारी दुनिया उसे अहमक और बेवकूफ़ कहेगी, इसलिए कि हर शख्स जानता है कि ये तमाम उलूम व फ़नून महज ज़ुबानदानी और निजी मुताले से यानी पर्सनल स्टडीज़ से ज़ाती मुताले से हासिल नहीं होते हैं, बल्कि उनके लिए साल हर साल की मेहनत दरकार है, उन्हें माहिर असातिज़ा से पढ़ा जाता है, उसके लिए बड़ी बड़ी दरसगाहों में कई कई इम्तहानात से गुजरना होता है, फिर किसी माहिर फन के पास रहकर उनका अमली तजुर्बा करना पड़ता है, तब कहीं इंसान इन उलूम का मुबतदी कहलाने का मुस्तहिक बनता है। मुबतदी का मतलब होता है बिगिनर, नहीं तो जब वो ये सारी चीजें पढ़ता है ना और बाकायदा हाउस जॉब भी करता है और बाकायदा जो है वो रेजिडेंसी करता है या साथ में बैठ करके जो है वो हाउ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हासिल करता है, उसके बाद भी वो एक्सपर्ट नहीं कहलाता, उसके बाद भी वो मुब्तदी कहलाता है, ठीक है, इम्तिहान पास करने के बाद भी सिर्फ ग्रेजुएट और बिगिनर और मुब्तदी। जब इन उलूम व फ़नून का ये हाल है, तो तफसीर कुरान करीम जैसा इल्म महज अरबी ज़ुबान सीख लेने की बिना पर आखिर कैसे हासिल हो जाएगा? आप गुज़श्ता सफ़हात में देख चुके हैं कि इल्म तफसीर में दर्क हासिल करने के लिए, यानी एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए, उसका अच्छी तरीके से इदराक हासिल करने के लिए, हम इदराक का लफ्ज़ आम इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर, तो उसमें दर्क हासिल करने के लिए कितनी वसी मालूमात दरकार होती हैं। तो पीछे काफ़ी सारी चीज़ें इवन मुकदमे के अंदर भी हमने पढ़ी थी, और इसमें तो खैर आधी किताब से ज़्यादा गुजर चुकी है, वो हमने तो नहीं पढ़ी है पूरी ये वाली किताब। तो बहरहाल आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह हमारे लिए काफ़ी होंगी इसको यानी मटेरियलाइज करने में, इस क्लेम को जो कि मुफ्ती तकी इस्माइल साहब कर रहे हैं ना, तो इस ये खाली ये क्लेम जो है वो हवाई क्लेम तो नहीं है ना। तो फरमाते हैं कुरान करीम आम किताबों की तरह कोई ऐसी मुसलसल किताब नहीं है कि जिसमें एक मौजू की तमाम बातें एक ही जगह लिखी हुई हों, बल्कि वो तो दुनिया की तमाम किताबों के बरखिलाफ अपना एक जुदा गाना और मुमताज़ असलूब रखता है। लिहाजा किसी आयत को करार वाकई तौर पर समझने के लिए अव्वल तो ये ज़रूरी है कि इस आयत की मुख्तलिफ क़िराअतों, उस मौजू की तमाम दूसरी आयात और उनके मुतअल्लिक़ात पर पूरी नज़र पूरी निगाह हो। ठीक है, मुख्तलिफ क़िराअतों के ऊपर भी निगाह हो ना, क्योंकि मुख्तलिफ क़िराअतें भी हम पढ़ चुके हैं कि 7 हरूफ के ऊपर नाजिल हुआ, और 7 हरूफ का मतलब जो है वो 7 किराते नहीं है, बल्कि किराते तो 20 से भी ज्यादा किराते हैं। ठीक है, अब उन किरातों के अंदर अल्फाज जो हैं वो बाकायदा मुख्तलिफ अल्फाज भी हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ जो हैं वो हिज्जे भी हैं। हिज्जों की तो इख्तलाफ आप लोगों के साथ हमने शेयर भी किया है ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की सूरत में, लेकिन बाकायदा मुख्तलिफ अल्फाज भी हैं, नन शुजुहा व नन शुरुहा वाले जैसे एग्जाम्पल दी थी। तो अब उनके मुख्तलिफ थोड़े थोड़े से डिफरेंट मानी हैं, पूरी आयत का मफहूम तब्दील नहीं होता, लेकिन उस लफ्ज़ का तो मानी डिफरेंट होता है ना। तो इस आयत की मुख्तलिफ क़िराअतों, उस मौजू की दूसरी आयात जो कि उसी टॉपिक के ऊपर उसी मौजू के ऊपर मुख्तलिफ कुरान मजीद के मुकामात में आई हैं, और उसके जो मुतअल्लिकात हैं कि भाई उसका वही शान नुज़ूल, उसके जो है वो कितनी दफ़ा वो चीज़ नाजिल हुई, किस किस पस मंज़र में नाजिल हुई, क्योंकि एक से ज़्यादा पस मंज़र में भी आयात नाजिल हुई हैं। फिर आप पीछे देख चुके हैं कि बहुत सी आयतें किसी खास वाकयाती पस मंज़र से वाबस्ता होती हैं, जिसे सबब नुज़ूल कहा जाता है, और जब तक सबब नुज़ूल की मुकम्मल तहकीक ना हो, उसका पूरा मफहूम नहीं समझा जा सकता। नीज़ ये हकीकत भी आपके सामने आ चुकी है कि कुरान करीम बहुत सी मुजमल बातों की तशरीह व तफसीर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इरशादात पर छोड़ देता है, लिहाजा हर आयत में ये देखना ज़रूरी होता है कि उसकी तफसीर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कोई कौली या अमली तालीम मौजूद है या नहीं है। यानी क्या मतलब, हदीस के पूरे खजाने को देखना पड़ता है। ठीक है, सबसे कॉमन और आम इंसान के लिए मिसाल जो है वो नमाजों की है। ठीक है, कि नमाज के तो औकात भी बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है। सूरह बनी इसराइल की ही वो जो आयत है, ये जिससे जो है वो इशारा मिलता है नमाज के पांच नमाजों के औकात का। ठीक है, उसके अंदर ये कहीं नहीं है कि जी मतलब सूरज ग़ुरूब होगा तो मगरिब का नमाज का वक्त होगा, और ये होगा तो फिर इशा की नमाज का वक्त होगा, और ये होगा तो फिर जवाल का वक्त जो है वो ख़त्म होगा। क्लियरली तो नहीं है ना, उससे समझना पड़ता है उसे। फिर उसके बाद नमाज का तरीका ये तो बिल्कुल भी नहीं है। औकात के लिए तो फिर इशारे मौजूद हैं, तरीके का तो कोई इशारा भी मौजूद नहीं। ठीक है ना, सवाए इसके कि हाँ सजदा और रुकू ये ठीक है जी, लेकिन 2 सजदे ये किधर है भाई, 2 सजदे करो नमाज के अंदर। ठीक है, तो ये तो सबसे कॉमन मिसाल है हमारे लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को देखना पड़ता है, और अहादीस का जो जो ज़खीरा है वो तो कुरान मजीद के 30 पारों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ा ज़खीरा है ना। जस्ट सही अहादीस, इवन सही बुखारी बुखारी अगर आप ले लें तो सही बुखारी के अंदर भी इतनी सारी जो है वो अहादीस मौजूद है, फिर उनके अलावा और भी बहुत सारी सही अहादीस की किताबें हैं। तो लिहाजा हर आयत में देखना ज़रूरी होता है कि इसकी तफसीर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई कौली या अमली तालीम मौजूद है या नहीं, और अगर मौजूद है तो वो तनकीद रिवायात के मुसल्लम उसूलों पर पूरी उतरती है या नहीं। सही हदीस है, ज़ईफ़ हदीस है, या मौजू हदीस है, और फिर हदीसों की कितनी मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ीद तफसीलात हैं उसके अंदर। 18-19 किस्म की जो है वो एक तरीके से हदीस की किस्में बनती हैं, फिर दूसरे तरीके से दूसरी किस्में बनती हैं। नीज़ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो नज़ूल कुरान के आइनी शाहिद थे, इस आयत का क्या मतलब समझा था? अगर इस बारे में रिवायात के दरमियान कोई तआरुज़ व इख्तिलाफ़ है, तो इसे क्यों कर रफ़ा किया जा सकता है, यानी कैसे रफ़ा किया जा सकता है? ठीक है, रफ़ा करने का मतलब रिमूव करना, उसको उठाना, रिमूव करने के मानी में होता है ये। तो कैसे इख्तिलाफ़ को, तआरुज़ को अगर नज़र आता है बज़ाहिर, तो उसको कैसे रफ़ा किया जाएगा? फिर अरबी ज़ुबान एक वसी ज़ुबान है, जिसमें एक एक लफ्ज़ के कई कई मानी और एक एक मानी के लिए कई कई लफ्ज़ होते हैं। लिहाजा जब तक उस ज़माने के अहले अरब के मुहावरात पर अबूर ना हो, किसी मानी की ताज़ीन बहुत मुश्किल होती है। इसके अलावा सिर्फ अल्फाज के लुगवी मानी जानने से काम नहीं चलता, क्योंकि अरबी में नहवी तरकीबों के इख्तलाफ से मानी में तब्दीली पैदा हो जाती है। ठीक है, यानी जो जो सेंटेंस कॉम्पोजिशन, जिसको नहवी तरकीब कहा जाता है, ठीक है, जिस तरह से तरकीब यानी कॉम्पोजिशन, मुरक्कब, एक जुमला क्या होता है, अल्फाज का मुरक्कब होता है, तो एक आयत जो होती है वो अरबी अल्फाज का मुरक्कब होती है, उसी को जो है वो उसकी तरकीब क्या क्या ऑर्डर है उसका वगैरह, तो तरकीबों के डिफरेंस से जो है फिर मानी में तब्दील पैदा हो जाती है। ये तो नहव पढ़ने वाले, जिन्होंने हाल ही में अगर हिदायत तो नहव और माशाल्लाह शरह जामी वगैरह की किताबें पढ़ी हैं, तो अरबी जुबान की नहवी तरकीब और इतनी सारी किस्में, फेल जो है वो पहले आता है, फिर फाइल आता है, फिर उसके बाद जो है मफूल आता है, लेकिन खाली ये एक तरीका नहीं है, और भी कितने सारे तरीके हैं, मुतअल्लिक़ात होते हैं, राइट, और वो मुकदम फेल मुकदम हो गया, पता नहीं फाइल मुकदम हो गया, और मफूल मुअख्खर हो गया, मफूल जो है मुकदम हो गया, वो पहले आ गया, वो बाद में आ गया, इतनी सारी मुख्तलिफ कॉम्पोजिशन होती हैं। और ये बात अरबी लुगत व अदब पर मुकम्मल अबूर के बगैर तय नहीं की जा सकती कि इस मकाम पर कौन सी तरकीब मुहावरात अरब के ज्यादा करीब है। ठीक है, जैसे पहले बात हुई थी कि सिर्फ अरबी अल्फाज की मानी से काम नहीं चलता, क्योंकि अल्फाज के तो बहुत सारे मुख्तलिफ मानी होते हैं, लेकिन कौन सा माना जो है वो अरबी मुहावरे में इस्तेमाल हुआ, क्योंकि कुरान मजीद जो है ये अरबी मुहावरे के ऊपर नाजिल हुआ है, यानी बोलचाल की जो अरबी थी उस जमाने की। ठीक है, तो अब डिक्शनरी के अंदर उस लफ्ज का कोई मानी लिखा हुआ है, लेकिन वो मुहावरे में इस्तेमाल नहीं होता, तो भाई मुहावरे वाला मानी इस्तेमाल किया जाता है, डिक्शनरी वाला मानी मानी खाली इस्तेमाल नहीं किया जाता। और सबसे आखिर में कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, और अल्लाह ताला अपने कलाम के असरार और मारिफ ऐसे शख्स पर नहीं खोलता जो उसकी नाफरमानियों पर कमर बस्ता हो। लिहाजा तफसीर कुरान के लिए अल्लाह की बंदगी, उसके साथ ताल्लुक, खास ताअत व तकवा और हक परस्ती के बेलाग जज्बे की जरूरत है। ठीक है, यानी तकवा, तो एक मुत्तकी इंसान जो है ना, वही कुरान मजीद के असरार और मारिफ तक पहुंच सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने जो कुरान के जो जो असल मानी है वो अपने नाफरमान के ऊपर नहीं खोलता। ठीक है, तो अब जो है वो एक शख्स जो है वो एक या तो काफिर है, जैसे ओरिएंटलिस्ट, वो भी कुरान मजीद की तफसीर के दरपे होते हैं, तो वो तो तकवा की बुनियादी स्टैंडर्ड को भी पूरा नहीं उतरते, जो कि ईमान लाना है, वो तो ईमान ही लेकर क्या है। फिर एक फासिक फाजिर या कोई इस किस्म का इंसान जो कि शरीयत के उसूलों की पामाली करता है, ठीक है, पर्दे का कोई ख्याल नहीं करता, मौसीकी से नहीं बचता, शराब से नहीं बचता, वो बैठ करके जो है वो अपनी अरबी दानी की बुनियाद पर तफसीर कर रहा है, तो वो तो नहीं कर सकेगा ना, यानी वो तो सही मानों तक नहीं पहुंच सकेगा। इस तशरीह से ये बात वाजे हो जाती है कि तफसीर कुरान के लिए सिर्फ अरबी जुबान की मामूली वाकफियत काम नहीं दे सकती, बल्कि उसके लिए इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, उसूल हदीस, उसूल फिकह, इल्म फिकह, इल्म नहव, इल्म सर्फ, इल्म लुगत, इल्म अदब और इल्म बलागत में माहिराना बसीरत, और इसके साथ साथ तहारत व तकवा ज़रूरी है। इन ज़रूरी शराइत के बगैर तफसीर की वादी में कदम रखना अपने आप को गुमराही के रास्ते पर डाल देने के मुतरादिफ है। और इसी तर्ज अमल के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मन काला फिल कुरान बिगैर इल्म फल यतबव्वा मक़अदहू من النار، کہ جو شخص قرآن میں بغیر علم کے گفتگو کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کون سے والے علم کے بغیر گفتگو کرے؟ ان سارے علوم کے بغیر جن کی کہ ابھی سامنے فہرست آپ کے سامنے ہم نے پڑھی، اور امید ہے کہ آپ نے اسکرین پہ بھی دیکھ لی ہوگی، امید ہے کہ کچھ لوگوں نے کم از کم پرنٹ آؤٹ بھی لے کر کے ان صفحات کا اپنے سامنے رکھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اصول تفسیر، اصول حدیث وغیرہ، لغات، بلاغات، صرف، نحو اور علم ادب وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ چند الفاظ ہیں نا. امید ہے کہ ہم تو پہلے بھی اس اصول کے خلاف نہیں تھے. ٹھیک نا، الحمد للہ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں اچھا گمان یہی ہے کہ پہلے بھی آپ لوگ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو کہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا واسطہ جو ہے وہ اپنے خاندانوں میں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں میں، اور اپنے جو ہے وہ ملنے جلنے والوں میں ایسے لوگوں سے پڑھتا ہوگا یا کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے جو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اس طرح کے آرگومنٹیشن شروع کر دیں کہ نہیں کیا مولویوں کی اجارہ داری اور یہ سب تو غلط ہے اور ہم کر سکتے ہیں یا ہمارے رب کا کلام ہے وغیرہ. بھائی آپ کے سامنے کچھ تو پوائنٹس ہونے چاہیے نا، جو کہ یا تو آپ ان کے سامنے رکھ کر کے ان کا منہ بند کرا سکیں، یا اگر ان کا منہ نہیں بھی بند کرا سکتے تو کم از کم شیطان کا منہ تو بند کرا سکتے ہیں نا، جو کہ آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالے گا، ان کے آرگیومنٹیشن کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالے گا. ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر ہمارے وہ ساتھی یہاں موجود ہیں کہ نہیں ہیں پتہ نہیں، انہوں نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک بہت ہی نا ہائیلی اچیوڈ ایک پاکستانی سائنسدان صاحب، جن کو بہت بڑا جو ہے وہ ایوارڈ بھی ملا نیشنل لیول کے اوپر، کسی ملک کے اندر ایوارڈ ملا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے ایوارڈ کی خوشی میں، وہ ریسرچر تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ کے ریسرچرز کو جو ہے نا پھر کھانے کی دعوت کے اوپر بلایا. ٹھیک ہے، اب کھانے کی دعوت کے اوپر جو ہے نا انہوں نے پھر کھڑے ہو کر کے بیان کرنا شروع کر دیا کہ جو ان کے پیر صاحب ہیں، ان کے پیر صاحب وہ یہ جاوید احمد غامدی میاں ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جاوید احمد غامدی کی شان میں جو ہے وہ قصیدے پڑھنے شروع کیے اور بولنا شروع کیا کہ آج تک جو ہے وہ قرآن کو جو ہے نا وہ کسی نے صحیح نہیں سمجھا ہے، اور جاوید احمد غامدی صاحب نے جو ہے وہ قرآن مجید کو صحیح سمجھا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں شروع کریں. ٹھیک ہے، اور سب نے غلط سمجھا ہے وغیرہ. تو انہوں نے کافی سارے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا، اور وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ سائنٹسٹ قسم کے لوگ تھے، ریسرچر قسم کے لوگ تھے، اور یونیورسٹی کے اکیڈمی میں سے بھی تھے اور شاید پڑھنے پڑھانے والوں میں سے بھی تھے. ٹھیک، تو اب جو ہے نا تو ایک تھے ان میں، ان کی قسمت خراب تھی، مطلب قسمت تو ایکچولی اچھی تھی لیکن بظاہر ان کی قسمت خراب تھی، کہ ایک جو ہے نا وہ ہمارے اکابرین کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی درمیان میں موجود تھے وہاں پر. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ تبلیغی سینئرز میں سے بھی تھے اور علماء کرام کے ساتھ بھی ان کا تعلق. تو انہوں نے جو ہے نا وہ ان کو بالآخر آخر میں جو ہے نا وہ ٹوکا اور ان سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، تو بھائی آپ بھی ریسرچر ہیں، ہم بھی ریسرچر ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری فیلڈ کے اندر، ریسرچ کی فیلڈ کے اندر جو ہے نا وہ ایک اصول جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس والی ریسرچ کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پریفر کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں کہ جس کی طرف جو ہے وہ زیادہ ریسرچرز ہوں. ٹھیک ہے، ہم اس والی ریسرچ کو، اس والی فائنڈنگ کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں اور سلیکٹ کرتے ہیں جس طرف زیادہ ریسرچرز کا میلان ہو، ہے نا، یعنی جماعت کا میلان ہو، جماعت آف ریسرچرز کا. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو معنی جو ہے وہ آپ کے پیر صاحب نے یعنی غامدی صاحب نے ڈٹرمن کیے ہیں، تو ان کی طرف تو کسی کا میلان نہیں ہے سوائے آپ کے پیر صاحب کا. تو یہ والا تو اصول تو پھر یہ تو ہمارے ایون ریسرچ کے اصول کے اوپر یہ پورا نہیں اترتا. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ وہ انہیں کی فیلڈ کی بات تھی نا، تو اب وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا، تو وہ خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے، جب محفل برخاست ہوئی تو یہ جو تھے نا جنہوں نے کہ یہ نقطہ اٹھایا تھا اور ان صاحب کو بالآخر چپ کروایا تھا، ان کے پاس جو ہے نا پھر باقی لوگ آئے اور انہوں نے ان کو یہ کہا کہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا اور اس بندے کو چپ کروایا، ورنہ
हम लोग उनकी बातों से कायल हो चुके थे, हम उनकी बातों से कायल हो चुके थे। अगर आप ये बात ना बोलते ना, तो फिर तो हम तो उन्हीं की साइड पे हो जाते। अब आप सोचें, ठीक है, कि ये जब आपके पास इल्म नहीं होता ना, ठीक है ना, जब आपका कुछ आपके पास भी जरा सॉलिड पॉइंट्स नहीं होते, तो फिर दूसरे को जवाब देना तो दूर की बात, दूसरे को चुप करना दूर की बात, आप खुद अपने शैतान को भी चुप चुप नहीं करा सकते, जो कि आपके दिल के अंदर वसवसा डालने की हर वक्त मेहनत करता रहता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरि नास मिनल जिन्नति वन नास, राइट, जिसके जिक्र के ऊपर अल्लाह ताला ने अपने कलाम का इख्तिताम फरमाया है, जो कि जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी है, राइट। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम, हम कहते हैं ना, जिस चीज से कोई कोई अपनी बात को शुरू करता है वो इंतहाई अहम बात होती है, जिससे उसने शुरू किया अपने कलाम को। तो अल्लाह ताला ने अपने कलाम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रहमत के तस्करे से शुरू किया, और अपनी रहमत के दो नाम जिक्र किए, और फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह, कितने पॉजिटिव नोट से शुरू किया, तमाम तारीफें, राइट, रब्बिल आलमीन, रब्बे आलमीन के लिए, रब्बुल आलमीन के लिए, ठीक है ना। तो इब्तिदा जो है वो इंतहाई अहम। तो भाई क्या खात्मा अहम नहीं होता, आखिरी वसीयत अहम नहीं होती? तो आखिरी वसीयत क्या है कुरान मजीद के अंदर? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, एक ही की पनाह मांगी जा रही है, लेकिन तीन अलकाबात के साथ, रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। किससे, किसके खिलाफ पनाह ली जा रही है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास के शर से पनाह ली जा रही है, और खन्नास को फिर डिफाइन भी किया जा रहा है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो कि इंसानों के सीनों में वसवसे डालता है। और ये क्या मखलूक होती है? ये कीड़े मकोड़े होते हैं, ये रेप्टाइल्स होते हैं, ये नबातात में से होता है, ये जमादात में से होता है, ये हैवानात में से होता है, या ये जिन्नात में से होता है? नहीं, ये सिर्फ जिन्नात में से नहीं होता, बल्कि ये इंसानों में से भी होता है, ये खन्नास इंसानों में से भी होता है, ठीक है। तो फिर जरूरी है हमारे लिए ये वाला इन के नहीं, वरना अगर खुदा ना खास्ता कोई खन्नास हमारे पीछे पड़ गया, ये हमें अपने घर दावत पे बुला लिया, और फिर उसने शुरू कर दी इस किस्म की बातें करना, तो फिर तो अगर इल्म नहीं होगा तो फिर तो हम उन्हीं की तरफ, जिस तरह वहां पे बाकी सारे लोग रिसर्च लेवल के लोग थे, एकेडमी प्रोफेसर लेवल के लोग थे, है ना। और आजकल तो दीन का दौरदार ऐसा तो नहीं होता कि आजकल के जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं उनको दीन का कुछ पता नहीं होता, वो तो अच्छा खासा नमाजी रोजेदार भी होते हैं आजकल के तो, क्योंकि दीन की हवाएं तो चल चुकी हैं। पहले तो एथियस किस्म के लोग होते थे 30 साल पहले, अब तो नहीं होता कोई भी एथियस। लेकिन बस इबादत की हद तक नॉलेज का होना काफी नहीं है अपने आप को खन्नास के वसवसों से बचाने के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए सिर्फ इबादत की हद तक की नॉलेज काफी नहीं है, ठीक है ना। जमाना बदल चुका है, जमाना एक नए दौर के अंदर दाखिल हो चुका है, इसका हमें इदराक होना इंतहाई जरूरी है। बहरहाल, तो इस बात के से फिर हम अगली बात पे जाते हैं कि चंद गलत फहमी, ठीक है, तो इस सिलसिले में चंद गलत फहमियों का इजाला जरूरी है। आपने स्क्रीन साफ चला रहे ना जैतुल्ला साहब? हाँ, चंद गलत फहमियाँ तो कहते हैं कि बाज लोग कहते हैं कि कुरान करीम ने खुद अपने बारे में इरशाद फरमाया है कि वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल में मुद्दकर, और हकीकत यह है, लकद हकीकत यह है कि हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया है। अब क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे, ठीक है। तो जब कुरान खुद कह रहा है, और जब कुरान करीम एक आसान किताब है, तो इसकी तशरीह के लिए किसी लंबे चौड़े इल्म व फन की जरूरत नहीं है, बल्कि हर शख्स कुरान करीम का मतन पढ़कर उसको समझ सकता है, यानी उसका जो टेक्स्ट है मतन, राइट, उसका जो असल कोर मवाद है उसको पढ़ करके जो है वो समझ सकता है। लेकिन ये इस्तदलाल एक शदीद मुगालता है। देखिए, ऐसे मुगालते लगते हैं ना, इतनी सादा सी बात है, लेकिन मुगालता पता चला कि ये तो मुगालता है, गलत फहमी है, जो खुद कम फहमी और सतहियत पर मबनी है। वाकया ये है कि कुरान करीम की आयात दो किस्म की हैं, एक तो वो आयतें हैं जिनमें आम नसीहत की बातें
सबक आमोज वाकयात और इबरत व मौइज़त के मज़ामीन बयान किए गए हैं, है ना, डराने के, इबरत के, कैसा उसके ऊपर अजाब आया, कैसा उसके ऊपर अजाब आया, और वाज़ व नसीहत, ठीक है, मसलन दुनिया की नापायदारी, जन्नत व दोजख के हालात, खौफ खुदा और फिक्र आखिरत पैदा करने वाली बातें, और जिंदगी के दूसरे सीधे सादे हकायक। इस किस्म की आयतें बिला शुबह आसान हैं, और जो शख्स भी अरबी जुबान से वाकिफ हो वो उन्हें समझकर नसीहत हासिल कर सकता है, ठीक है ना, उनको समझने के लिए। यानी इवन सर्फ नहव और थोड़ी बहुत आपने जो है वो अदब वगैरह पढ़ लिया हो ना, तो उनको आप समझ सकते हैं। इवन नमाज के अंदर इमाम तिलावत कर रहा होता है, आपको वो समझ में आ रही होती है, ठीक है ना, अगर आपने सर्फ नहव की और थोड़ी सी जो है वो जुमले की और थोड़ा तर्जुमा वगैरह करने की आपने प्रैक्टिस कर ली हो, बस आपके लिए काफी हो जाता है। खुद तफसीर नहीं करना, समझना और उससे नसीहत हासिल करना, तो ये आपके लिए काफी हो जाता है। बल्कि ये मकसद कुरान करीम के मुस्तनद तराजुम तराजुम देख करके भी एक हद तक हासिल हो जाता है। सर्फ नहव भी उसके लिए कंपलसरी नहीं है। मजकूरा आयत में इसी मकसद के लिए ये कहा गया है कि हमने कुरान को आसान कर दिया है, चुनाचे कुरान करीम ने ये बात मुजमल नहीं छोड़ी, लिज़िक्र यानी नसीहत के वास्ते का लफ्ज बढ़ाकर इस हकीकत को रोज़े रोशन की तरह वाज़ह कर दिया। लिज़िक्र यानी इसको मुतलक नहीं छोड़ा, मुजमल, मुजमल का मतलब होता है हाई लेवल, सुपरफिशियल, ठीक है ना, इजमाली, और एक और भी लफ्ज होता है कि इसको मुतलक यानी अनरिस्ट्रिक्टेड छोड़ दिया, नहीं, इसको रिस्ट्रिक्ट किया कुरान मजीद ने, मुकैद किया इसको कुरान मजीद ने लिज़िक्र का लफ्ज ला करके, ठीक है, कि हमने आसान किस काम के लिए किया है, नसीहत हासिल करने के लिए आसान किया, ठीक है। इसके बरखिलाफ दूसरी किस्म की आयतें वो हैं जो अहकाम व कवानीन, अकायद और इल्मी मजामीन पर मुश्तमिल हैं। इस किस्म की आयतों का कमा हक्कहू समझना और उनसे अहकाम व मसाइल मुस्तंबत करना हर शख्स का काम नहीं है। जब तक इस्लामी उलूम में बसीरत और पुख्तगी हासिल ना हो उस वक्त तक कुरान करीम से ये मकसद हासिल नहीं हो सकता। यही वजह है कि सहाबे कराम की मादरी जुबान अगरचे अरबी थी और अरबी समझने के लिए उन्हें कहीं तालीम हासिल करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम की तालीम हासिल करने में तवील मुद्दतें सर्फ करते थे। अल्लामा सुयूती रहमतुल्ला वगैरह ने इमाम अब्दुलरहमान सुलमी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि जिन हजरात सहाबा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम की बाकायदा तालीम हासिल की है, मसलन हजरत उस्मान बिन अफान और अब्दुल्ला इब्न मसूद रतान वगैरह, उन्होंने हमें बताया कि जब वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम की 10 आयतें सीखते तो उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ते थे जब तक इन आयतों के मुताल्लिक तमाम इल्मी और अमली बातों का इहाता ना कर लें। वो फरमाते थे कि फतअल्लमनल कुरआना वल इल्मा वल अमला जमीअन, कि हमने कुरान और इल्म अमल साथ साथ सीखा है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जो कि रिपीट हो रही है ये वाली अल्फाज यहाँ पे, मुकदमे में भी थी। चुनाचे मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह में रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सिर्फ सूरह बकरा याद करने में पूरे 8 साल सर्फ किया। मुस्नद अहमद में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम में से जो शख्स सूरह बकरा और सूरह आल इमरान पढ़ लेता हमारी निगाहों में इसका मरतबा बहुत बुलंद हो जाता था। गौर करने की बात है कि हजरत सहाबा जिनकी मादरी जुबान अरबी थी, जो अरबी शेर व अदब में महारत तामा रखते थे और जिनको लंबे लंबे कसीदे मामूली तवज्जो से अजबर हो जाया करते थे, उन्हें कुरान करीम हिफ्ज करने और इसके मानी समझने के लिए इतनी तवील मुद्दत की क्या जरूरत थी। कुरान करीम का तो एजाज ही ये है कि एक शख्स जिसको अरबी पढ़ना भी नहीं आता वो भी सुन करके याद कर लेता है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो सूरतें याद करना शुरू करते हैं, अभी उनका नाजरा भी मुकम्मल नहीं होता, उनको जो है वो किसी को जो है सूरह यानी तबारकल्लज़ी याद हुई भी है, किसी को जो है वो माशाल्लाह सूरह यासीन तक भी याद हो जाती है, पढ़ना भी आता नहीं है सूरह यासीन याद हो जाती है, क्योंकि याद करना इतना आसान काम है कुरान मजीद को, है ना, तो उनको क्यों इतने 8 8 साल लगते थे एक सूरत पढ़ने में। तो इसकी वजह सिर्फ यही थी, कुरान करीम उसके उलूम को सीखने के लिए सिर्फ अरबी जुबान की महारत काफ़ी नहीं थी। बल्कि यानी वो कुरान के उलूम सीखने के अंदर ये टाइम लगा रहे थे, सिर्फ याद करने में और पढ़ने में नहीं, बल्कि उसके लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और तालीम से फ़ायदा उठाना ज़रूरी था। जाहिर है कि जब सहाबा कराम को अरबी ज़ुबान की महारत और नुज़ूल वही का बराह रास्त मुशाहदा करने के बावजूद आलिम कुरान बनने के लिए बाकायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल करने की ज़रूरत थी, तो नुज़ूल कुरान के सैकड़ों साल बाद अरबी की मामूली शुद्ध बुद पैदा करके, टिट बिट जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो टिट बिट पैदा करके या सिर्फ तर्जुमे देखकर मुफस्सिर कुरान बनने का दावा कितनी बड़ी जसारत और इल्म दीन के साथ कितना कैसा अफसोसनाक मजाक है। ऐसे लोगों को जो इस जसारत का इरतिकाब करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि मन क़ाला फिल कुरान बिगैर इल्म फलयतबव्वअ मक़अदहू मिन النار, जो शख्स कुरान में बगैर इल्म की गुफ्तगू करे वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। फिर इसके बाद उलमा और इजाराधारी, ठीक है, देखें बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, कि डेविल जो है ना वो सुनने वालों के जहन में क्या क्या एतराजात डाल रहा है। तो दूसरा एतराज, पहला एतराज क्या था, लकद यस्सरना अल कुरान, और ये कहते हैं जी बड़े बड़े उलूम की जरूरत है, जवाब दिया उस एतराज का, ठीक है ना, प्रोएक्टिवली जवाब दिया। यह हो सकता है मुफ्ती साहब के पास ऐसे बहुत सारे आते होंगे जो इस किस्म के सवाल करते होंगे, तो हजरत ने उनको महफूज करके रखा और दिल में ये नियत रखी होगी कि जब मैं किताब लिखूंगा ना, मैं इन सारे सवालों के जवाब लिखूंगा उसके अंदर। इग्नोर नहीं किया, और ये तो पागल लोग हैं, ये तो दीवाने लोग हैं, ये तो करते रहते हैं इस किस्म की बकवास करते रहते हैं, तो इग्नोर करो उनकी बातों को, इग्नोर करो। नहीं, हर बात को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, आप हर बात को जो है वो पल्लू से भी नहीं बांध सकते, हर बात को जो है अपने सर पे सवार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको के शैतान एक्सप्लॉइट करेगा आपके खिलाफ, आपकी औलादों के खिलाफ, आपके अवामुन नास के खिलाफ, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उनका जवाब दिया। फिर अब इसी किस्म का दूसरा, उलमा और इजारादारी, ठीक है, कि बाज लोग ये एतराज उठाते हैं कि कुरान करीम तमाम इंसानों के लिए एक हिदायत की किताब है, लिहाजा हर शख्स को इससे अपनी समझ के मुवाफिक फायदा उठाने का हक हासिल है, और इसकी तशरीह व तफसीर पर सिर्फ उलमा की इजारादारी कायम नहीं की जा सकती। इजारादारी का लफ्ज है वो इंग्लू में क्या कहते हैं इसको, मोनोपोली, राइट, मोनोपोली, जैसे किसी मुल्क के अंदर किसी इंडस्ट्री के ऊपर किसी एक खानदान की मोनोपोली हो जाए, ठीक है ना, वही खानदान जो है ना, बस चीनी फॉर एग्जांपल है, चीनी की इंडस्ट्री है, तो अब एक खानदान जो है ना उसके पास सारा चीनी है, चीनी के सारे फैक्ट्री भी हैं, चीनी के सारे खेत भी हैं, शुगर केन के हैं, और जिसको खरीदना है वो चीनी वो उन्हीं के पास जाएगा, उन्हीं से खरीदेगा, वरना उसको मिलेगी नहीं। तो कुरान के ऊपर इजारादारी का मतलब क्या होगा कि मौलवियों ने जो है ना मोनोपोली मचाई हुई है कुरान मजीद के ऊपर। कितना अच्छा जवाब देते हैं, सुनिए, कहते हैं कि लेकिन ये भी इंतहाई सतही और जज्बाती एतराज है, जिसे हकीकत पसंदी और मामला फहमी से दूर का भी वास्ता नहीं। कुरान करीम बिलाशुबा तमाम इंसानों के लिए सरमाए हिदायत है, लेकिन इससे ये कैसे लाजिम आ गया कि हर अनपढ़ जाहिल भी इससे दकीक कानूनी और कलामी मसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। इल्म कलाम के मुताल्लिक यानी अकायद के मुताल्लिक जो मसाइल कुरान मजीद में हैं, तो कोई अनपढ़ जाहिल जो है वो उसमें से अकायद की जो है वो डेरिवेशंस कर लेगा, ये क्या है, ये अलग बात है, वो अलग बात है, ठीक है, और इस मकसद के लिए किसी किस्म की यानी और इस मकसद के लिए किसी किस्म की सिफात अहलियत दरकार नहीं है। इसकी मिसाल यूं समझिए कि कोई माहिर कानून, फलसफी या डॉक्टर अगर अपने फन पर कोई किताब लिखता है, तो जाहिर है कि इसका मंशा पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचाना ही होता है ना। अब अगर कोई ऐसा शख्स जो इन उलूम व फनून के मुबादी से भी वाकिफ नहीं है, राइट, उनकी बुनियादों से भी उसकी जो है वो यानी पता ही नहीं उसको कुछ इन उलूम व फनून का, वो खड़ा होकर के ये एतराज करने लगे कि ये किताबें तो पूरी इंसानियत के फायदे के लिए लिखी गई थी, उन पर माहिरीन कानून, फलसफियों और डॉक्टरों ने अपनी इजारादारी क्यों कायम कर रखी है, तो उसकी अकल पर मातम के सिवा और क्या किया जा सकता है। अगर किसी किताब से कमा हक्कहू फायदा उठाने के लिए एहलियत की कुछ सिफात मुकर्रर करना इजारादारी मोनोपोली कायम करने की तारीफ में आता है, तो फिर दुनिया के किसी इल्म हुनर को जाहिलों और अनाड़ियों की दस्त बुर्द से महफूज नहीं रखा जा सकता। दरअसल इल्म व फन की हर किताब इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए होती है, राइट, इल्म फन की हर किताब इंसानियत के फायदे के लिए होती है, यानी ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूजिक का फन और शराब बनाने का फन और सुअर से जो है वो इंडस्ट्री बनाने का फन, ये भी इंसानियत के फायदे के लिए होती है, ठीक है ना, तो वो तो इंसानों की बनाई हुई ये चीज़ है। बहरहाल बात आप समझ गए होंगे, बस पर ठीक है। तो कहते हैं कि जी इंसानियत के फायदे के लिए होती है, लेकिन इससे फायदा उठाने के दो ही तरीके हैं। या तो इंसान इस इल्म व फन को बाकायदा माहिर असातिज़ा से हासिल करे और उसके लिए जो मेहनत और जितना वक्त दरकार है उसे खर्च करे, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो जिन लोगों ने इस इल्म व फन को हासिल करने के लिए अपनी उम्रें खपाई हैं उनमें से जिस पर उसको ज्यादा एतमाद हो उसकी तशरीह व तफसीर पर भरोसा करे। इन दो रास्तों के अलावा जो शख्स कोई तीसरा रास्ता अख्तियार करेगा वो अपने ऊपर भी जुल्म करेगा और मुतअल्लिका इल्म व फन पर भी जुल्म करेगा। बिल्कुल यही मामला कुरान सुन्नत का भी है कि वो बिला शुबा पूरी इंसानियत के लिए दस्तूर हिदायत हैं, लेकिन उनसे हिदायत हासिल करने के लिए भी दो ही तरीके हैं। या तो इंसान इन उलूम को माहिर असातिज़ा से बाकायदा हासिल करके इनमें पूरी बसीरत पैदा करे, फल यतफक्कहु। कुरान मजीद खुद कहता है तुम्हें एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो कि तफक्कुह फिर दीन हासिल करे। तफक्कुह फिल दीन हासिल करने का यही मतलब है कि तफसीली गहराई में जाकर के समझ हासिल करे दीन का। ठीक है, तो पहला रास्ता समझ हासिल करना, तो खुद पढ़ो भाई जा करके, और खुद करो किससे जा करके पढ़ोगे, किताबों से भी, और किताबों के साथ जो है वो असातिज़ा कराम, ठीक है, उनके साथ पढ़ोगे तो तुम्हें पूरी बसीरत मिलनी शुरू हो जाएगी। या दूसरा रास्ता क्या है, फिर उन लोगों की तशरीह व तफसीर पर एतमाद करे जिन्होंने अपनी जिंदगी इन उलूम के लिए वक्फ की हैं इस 100% माकूल उसूल। अच्छा, तो इसके लिए भी कुरान मजीद के अंदर फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुमने खुद इल्म हासिल नहीं किया, खुद जो है वो गहराई में नहीं जा सके, बिकॉज यू हैड अदर प्रायोरिटीज, तुम्हारे पास अदर जिम्मेदारियां थी, तुम नहीं कर सके, फसअलू अहले ज़िक्र। अहले ज़िक्र यहां पर जिक्र का लफ्ज क्या है, ये अहले इल्म से जाकर के तुम सवाल करो, तुमसे पूछते रहो, जब कोई तुम्हें कोई मसला आए, जब कोई तुम्हें कोई क्वेरी आए तुम्हारे जहन में, जाकर के पूछ लो भाई। तो दोनों जो है ना कुरान मजीद के अंदर खुद भी मौजूद हैं, ये सिर्फ अपनी अकल से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ये बात नहीं लिख रहे, बल्कि नकल से भी बात कर रहे हैं, कुरान मजीद के आयात ही की नकल करके यहाँ पे बात कर रहे हैं। जिन्होंने अपनी जिंदगी इन उलूम के लिए वक्फ की है तो उनके पास जाकर के पूछ लो, उनके ऊपर एतमाद करो। इस 100% माकूल उसूल को जिस पर दुनिया के हर इल्म व फन के मामले में अमल किया जाता है, इजारादारी का ताना देना सिवाय सतही जज्बातियत के और क्या है? जस्ट एन इमोशनल स्लोगन, और बस खा मखा की जो है ना वो आप लगा रहे हैं, बस जज्बाती तौर पर बस लोगों के इजारादारी वगैरह वगैरह। क्या सारी दुनिया में सिर्फ कुरान सुन्नत ही माज अल्लाह ऐसे लावारिस रह गए हैं कि उनसे मसाइल मुस्तम्बत करने के लिए अहलियत की कोई शर्त दरकार नहीं है? मसाइल मुस्तम्बत करने के लिए, ठीक है, और उन पर हर कसो ना किस मशक़े सितम कर सकता है, ठीक है ना, यानी हर ऐरा गैरा, हमारी स्ट्रीट लैंग्वेज के अंदर कहते हैं ऐरा गैरा नथु गैरा, हर कसो ना किस, है ना, अदबी जुबान ये है, यानी जो चाहे वो उसको डाइसेक्ट करना शुरू कर दे। तो ऐसा तो नहीं है ना कुरान मजीद, ऐसे यानी लावारिस तो नहीं है कुरान सुन्नत। फिर उसके बाद जो अगला एतराज़ है वो अगली क्लास में पढ़ना होगा, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। उलमा और पापाइयत, ये जरा और क्लासिकल किस्म का ना, ये जो मोनोपोली की शक्ल उलमा और पापाइयत, ये तो क्रिश्चियनिटी के अंदर यही होता है, तो दीन में भी, हमारे दीन इस्लाम के अंदर भी इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी के जो है ना वो तरीके राइज करने शुरू कर दिए हैं। तो उसके ऊपर मुफ्ती साहब ने अपनी माशाल्लाह जो इनकी तहकीकात हैं, उनका जो इल्म है, जिसका कि वाकई हमारा ख्याल है कि ज़माने में कोई इसका इनका सानी नहीं है, यानी इनसे ज़्यादा बेहतर होना तो दूर की बात, कोई इनका सानी भी नहीं है, इनके बाद रिप्लेस करने वाला भी कोई नहीं है। क्योंकि ईसाइत के ऊपर जो सबसे ज़्यादा तहकीकी और यानी बिल्कुल फाइनल किताब है ना, क्या नाम है उसका, बाइबल, और क्या है वो, उसके ऊपर इन्होंने अपनी तहकीक लिखी है, तर्जुमा किया है, और यानी तो बहरहाल हजरत ने फिर उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त जो है वो तहकीकी मकाला बकायदा लिखे, इन शाला फिर अल्लाह की तौफीक हो तो अगली क्लास में पढ़ेंगे। किसी को कोई सवाल या कोई कमेंट वगैरह हो तो। वैकुम, ठीक है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसको हमारे हक में हुज्जत बनाए, हम सब के और हमारे आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत का सबब बनाए। वा आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।